ये तो दिखलाए अर्जुन सत्ता की साधना है, जैसे कृष्ण आया वैसे अर्जुन की घरों वृंदावन है, वैकुंठ नाम क्या है, वो यहाँ के नहीं है। तो उन्होंने ये दिखलाया जब तक कि कृष्ण को कोई परवाह नहीं मानी और जब तक कि अर्जुन जैसा कोई एकांतिक भक्त नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। कोई फूल वस्तुओं को ही सनातन का भी समझेगा, सनातन को ही फूल जाति और विचार नहीं, देव उपासना नहीं। सनातन के लिए इसलिए अर्जुन के समान होना होगा, सर्वधर्म प्रत्यक्ष मान एकम शरणम है, जो कृष्ण कह रहे मान एकम, अपने को लक्ष्य करके अपनी अंगुली से देखा है, मान एकम माने क्या है और दूसरा कोई नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें सभी देवता इत्यादि आ जाएंगे, मान एकम, मान एकम जो प्रत्यंती माया में काम कर। यदि कोई अनंत रूप में हमारी शरणागत होता है, ऐसे और भी व्यवशास्त्री का बुद्धि रहेगी एक के हो व्यवशास्त्र, सब कृष्ण ही सब कुछ है, सबके जीवों के आकार उत्तम स्थल इष्ट देव, इसको अच्छी तरह से समझकर इसलिए गीता में जहां जहां ये आया है कृष्ण ने अपने के लिए स्वयं और अर्जुन ने भी पीछे से यह बताया, अब मैं जान लिया कि आप ही परम ब्रह्म है, परम सप्तम स्वरूप है, सबके इस सब के कारण स्थित से लय और प्रलय के कारणों के जो ईश्वर है उन ईश्वरों से भी ईश्वर के ईश्वर है, ये अनुग्रह करके इस मंत्री में भूख में आगे। इसलिए उन्होंने सचेतन किया है संत सनातन धर्म क्या है, बंधार विकीर्णान यथाधार, यह शरीर मैं नहीं हूं, ये कपड़े के कर्म के अनुसार मिले, जब पुराना पड़ जाता है इन्हें छोड़कर के फिर नए शरीर में हम चले जाए, इसलिए यह शरीर आत्मा नहीं है। इसको अच्छी तरह से समझाया गीता का ये मूल विचार, इसलिए इस शरीर की जाति इस शरीर के कर्म इस शरीर के धर्म सनातन धर्म नहीं है, इसको पहले समझना। सनातन क्या चीज है उसको मैंने गीता में बताया, सनातन आत्मा है, आत्मा दो प्रकार की है, कहते तुमको बार बार जन्म लिया भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता, इसलिए हम सब जीवात्मा है, कृष्ण साइंस परमात्मा पुरुषोत्तम साइंस भगवान, ये दोनों कदापि एक नहीं हो सकते, नहीं तो कृष्ण को अर्जुन को शिक्षा देने की क्या जरूरत थी, यदि वो भी परब्रह्म होते इसलिए ब्रह्म कदापि नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नाम की तरह दिशा नहीं नाम धर्म था न कहने प्रेम के अनुसार शोर से अतिमान होता, आत्मा जो है वो अजर अमर शाश्वत है, उसका जन्म मरण नहीं है, किंतु भगवान की विमुख होकर के जब यह समझता है कि मैं ये शरीर हूं मैं ही आप मन तो इसके चक्कर में फंस जाता है और उसी को सनातन धर्म मानने लगता है, किंतु यह गलत, इसलिए आत्मा का परमात्मा के साथ में जो संबंध है इस संबंध को सनातन धर्म का, और मान लिया कि हम क्षत्रिय हैं हम वैश्य हैं हम मथुरा में हमारा जन्म है, मर जाएंगे ये सब बदल जाएगा, जान जाएंगे वहां समझे ये सनातन धर्म कैसे होगा, ये सनातन धर्म नहीं, इसलिए आत्मा सनातन है और कृष्ण के साथ में जो संबंध है वो संबंध क्या ब्रज ने आकर के उन्होंने दिखाया, कोई उनका रिश्तेदार कोई उनके बीच के मित्र है कोई उनके माता पिता के संबंध कोई उनकी प्रियतमा गोपियां, ये जो संबंध है नित्य है मित्र से गोपियों को साधारण मंत्र और उनसे भी कोटि कुछ सुंदर है वो जिनके चरणों में कृष्ण अपने सिर को देकर के क्षमा मांगते हैं, न पा रहे हम निर्वर्तन जाते, इसलिए गोपियों को साधारण आत्मत्व दिए गए तो यह पद्धति न नहीं तो दूर। इसलिए सनातन धर्म सदा सत सदा शरीर के बाद ही रहेगा, लाख जन्मों के बाद ही रहेगा, वो आत्मा अजर अमर मित्र शास्त्र सनातन और कृष्ण सनातन के मूल। इसलिए कृष्ण के प्रति आत्मा का जो धर्म है वो सनातन है। इसीलिए यहां पर कहा गया कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परिचर्य मां एकम शरण, और जितने भी धर्म हैं वो सनातन नहीं है, उनको तुमको आज नफरत प्रत्याग करना पड़ेगा, प्रत्याग करके मेरे चरण में आकर के मेरी सेवा करना, यही सनातन है और कोई दूसरा सनातन धर्म नहीं है। उन्होंने कहा देखो गीता जो ग्रंथ है एक बॉक्स के समान, सिकारी के समान, उसमें कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग का विवेचन हुआ, किंतु ये तीनों जो तीन नहीं आया था मत समझो, जैसे आम कच्चा आम बीच वाला आम और एक दंपा आम, ऐसे पहले जब कर्म उद्योग का आश्रय लेकर के भगवान की तरफ में आगे बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं कर्म योग, जब क्या ज्ञान योग का आश्रय लेते हैं तो उसको कहते हैं ज्ञान योग, जब भगवान का जब हम भक्ति से भजन करते हैं भक्ति योग का आश्रय लेकर के उसको कहते हैं भक्ति योग, है जो ये भी उसका पहला जो रूप है या मार्ग का पहला जो भाग है उसको कर्म योग कहते हैं, दूसरे को कहते हैं भक्ति ज्ञान योग और तीसरे को ज्ञान कर्म का जो योग है ये निचला पेटा है, ज्ञान वाला जो है ये ऊपर का पेटा है और बीच में चिंतामणि विभाति इस भक्ति को रखा गया है। पहले सौ अध्याय में कर्म योग का वर्णन किया गया, वह कौन सा कर्म योग, अभी एक प्रश्न आया कर्म किसको करते हैं, विकर्म किसको करते हैं, सकर्म किसको करते हैं, इसमें पहले कर्म किसको करते हैं इसको जरा सावधानी के साथ सुना जाए। मैं जाता हूं इसमें कर्म क्या है, इसमें तो भाग की ओर है इनफ्रेंडली खाते हैं, अकर्म क्रिया है इसमें कर्म नहीं, मैं रोटी खाता हूं इसमें रोटी कर्म, रोटी किस लिए खाते हैं अपने लिए, जब कोई भी क्रिया हो अपने लिए की जाती है या अपने संबंधित लोगों के लिए स्कूल शरीर के द्वारा सब इसको कहते हैं कर्म, वही कर्म यदि भगवान के लिए करें तो ये कर्म नहीं ये भक्ति हो जाए। आप रोटी बनाते हैं अपने खाने के लिए परिवार के खाने के लिए बनाते हैं तो यह हो जाएगा कर्म, और यदि रोटी बनाते हैं ठाकुर जी के लिए तो यह कर्म नहीं है यह भक्ति है। निष्काम भगवत आदि कार्य को ज्ञान करते हैं इसके बाद इसमें जो कर्म जो हमने बताया इन कर्मों का जो भगवान से हमने कर दिया वो तो कर्म जो हो जाए, आज जो कर्म अपने लिए कर रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं चल रहे हैं फिर रहे हैं ये सब कर्म हो इसका फल आपको भोगना पड़ेगा इस जन्म में दस जन्म में, भगवान अच्छी तरह से सब की तरह चीज करके भगा लेगा उस पर आपका हाथ नहीं है, सचन सब कर्मण्ये वा विचार मां फले सदा फल की आशा मत करना नहीं तो बंधन हो जाएगा, फल की इच्छा छोड़ करके भगवत अर्पित कर्मों को कर ये बंधन नहीं होगा। कहते हैं प्रभु के लिए तुम जब भी कोई काम करता है तो ये बंधन नहीं होगा, अन्यथा तुम्हें बांध करके लाखों जन्मों तक तुमको इस संसार में रह जाएंगे बचाएंगे, इसलिए कर्म सौवा है जो अपने सुख के लिए अच्छा यात्रा करते हैं ये कर्म, और ये कर्म भी तीन प्रकार के हैं, एक कर्म है सत्कर्म जिससे अपना और दूसरे का जगत का जितना जीत हो उसे कहते हैं सत्कर्म, माता पिता की सेवा गुरुजनों की सेवा गाय की सेवा वैसी चीजें भी आगे हैं निर्देश और कार्य जिनको कर्म बदला गया है अभी उनको सत्कर्म, अतर्व किसको कहते हैं? कर्म साधना करना ही अतर्व। जानते हैं कि माता पिता की सेवा, पितियों की सेवा, अतिथि की देवो भव इत्यादि जानते हैं, माता पिता की गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, किंतु करते नहीं है, इसका नाम है कर्म। सीखा और सीखा तो क्या, सब कर्म के ठीक जी पर जो करते हैं उसको कहते हैं विकर्म। चोरी, डकैती, दुराचार, झूठ बोलना, ये सब है विकर्म। किंतु कितने से जो सत्कर्म हुआ, वैदिक जो सत्कर्म है उनको भगवान के उद्देश्य से करेंगे और उसका फल भगवान को दे देंगे, तो ये कर्म विद्या भक्ति किसी को कहते हैं कर्म। इसके द्वारा शिक्षक सुख होने के बाद में आप सात्विक वृत्ति में आकर के भगवान का ग्रहण करते हैं। ज्ञान योग जगत एक कर्म क्षेत्र है, आत्मा अजर। इसको आत्मज्ञान के लिए सब गुरु के पास में सभी सभी परिपाटेन परिप्रश्न सेवा। यदि सत्व को जानना है, यदि सुख और शांति को पाना है भाई, और ये जगत क्या है, मैं क्या हूं, ये जानना है सतगुरु के पास, तब विद्धि परिपाटेन परिप्रश्न सेवा। अरे तो समाधान करो, चले गुरु के मत जाओ, आप जो कहेंगे उससे स्वीकार करना, पैसा के लिए मत जाओ, परिपाटे ना परिप्रश्न खूब नम्रता के साथ में कहा जाए, यदि मैं जानने योग्य हूं तो इसे कहा। और सेवा इनके द्वारा से पूछो तो तत्वदर्शी तो नहीं, तत्व को बताएंगे या पता नहीं बताएंगे, उनको संसार का किसी चीज का प्राप्त नहीं है। इसलिए सब वो लोग तत्व से बताएंगे, आत्मा क्या है, हमारा धर्म क्या है, ये सब जो चीजें हैं जब भगवान के साथ में जो कुछ होकर के करेंगे वैदिक कर्म को इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। यदि भगवान का चित्त शुद्धि होने के बाद में सदगुरु के पदार्थ से शुद्ध भक्ति में प्रवेश होता, कहते हैं गीता में एक कहा गया है, जो लोग अन्य देवता और देवियों की पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु अवधि पूर्वकम व्यापार का भी बता जनते सभ्या सभ्या से अभी मांग ले लो कम केवल जजन की अवधि पूर्वकम देवता देवी भगवान की भी छुट्टियां हैं, भगवान नहीं है, जिसे भी अवतार है ये स्वयं भगवान ही है। जितने भी देवताओं का वर्णन गीता में किया गया वो सब विभूतियां हैं, ये विभूतियां भगवान की ही शक्तियां हैं, भगवान के अलग नहीं है किंतु भगवान भी नहीं है। इसलिए इनकी विभूतियों के प्रति आदर करो, किंतु यदि भगवान नाम करके इनकी पूजा करेंगे तो ये अविष्णु स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान को भगवान और विभूतियों को विभूति मान करके पूजा करने से कराई जैसी पूजा होगी। इसीलिए आगे ये कहते हैं ज्ञान की देवता देवान, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवलोक में जाएंगे, और जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वो भूत लोक में जाएंगे। भूत लोग क्या, भूत भुआ का मा जाना तरफ सब तरह संग्रह शासन प्रकार इत्यादि, ये सब भूत लोग, इनमें वो जाएंगे। यदि स्वर्ग में गए वहां के चेतन भोक्ता सर्वलोक विचार सीधे सुनने मत लोग अपनी तब वहां से ठीक अपने भोगों को होकर के लौट आएंगे। इसका किंतु जो लोग मेरी उपासना करते हैं आप जिससे आप उंगली से कार्य करते हैं वे मेरे धाम नहीं जाएंगे, और जो लोग मेरे धाम में जाते हैं वहां से उनका पुनर्गमन नहीं होता और वो कहा हो जाएगा। इसलिए सब देवताओं की उपासना और भगवान की उपासना, कृष्ण और राम की उपासना एक नहीं है, उनकी उपासना सनातन है, इनकी उपासना सनातन नहीं है, क्योंकि ये देवलोक में जाकर के फिर यहां से गिर जाएंगे। इसलिए इस सनातन धर्म को समझना चाहिए, इसलिए गीता में इन्होंने स्पष्ट करके इन चीजों को बताया। देवताओं की उपासना कहीं भी गीता में पंच उपासना की बातें नहीं कही गई, क्योंकि ये सनातन धर्म नहीं है। सही समझ में जितने स्थूल विचार है ये पीछे से जाति समाज का कल्याण करने के लिए बनाया गया, किंतु जब गंभीर रूप से इस पर हम विचार करते हैं तो देखते हैं कृष्ण की राम की भगवत उपासना ही सर्वश्रेष्ठ स्नातक और नित्य और शास्त्र है। की उपासना शंकर की वैष्णवान समूह है। गीता में भी उसको भगवान की विकृति कहा गया, पंच उपासना पंच का था, राम का था, अपना सिर चढ़ा देता था, उसके शरीर ये दस उसके सिर हो गए, और जब मान के उनको कोई काट देता है तो फिर वो निकल पड़ते हैं। शंकर की उपासना, किंतु वही जब मारा जा गया 1,00,000 पुत्र और 17,00,000 अनादि सब भंग हो गया, सोने की नारा जल गई, क्यों जल गई? राम का भी हो शंकर जी के पास के कारण जो हुआ, क्योंकि जो समझना चाहिए कंस भी यहां पर कंसेश्वर की चीजा करता है, वो भी कंसेश्वर अंगेश्वर है। शंकर जी को गुरु मान करके वैष्णव मान करके यदि यह प्रार्थना किया जाए, जैसे आप ही हमारे गुरु हैं, कृष्ण के चरणों में राम के चरणों में हमको भक्ति दीजिए, तब तो वो प्रसन्न होकर इसलिए इन तस्वीरों को समझना चाहिए। इसलिए सर्वधर्मान कर्तव्य इत्यादि कहा गया। गीता का अभी अधिक समय में नहीं हो सकता, इसलिए संक्षेप में यह बताया। गीता के 12वें अध्याय में भक्ति होगा, उसमें बदलाव है। दो प्रकार की उपासना आपने बताई हमें, एक तो अनिर्देश्य अभ्यस्त अनादि सप्तमी उपासना की बात बताई, और दूसरी बात नहीं भक्ति की बात। इन दोनों में मैं समझ नहीं पाता हूं कि दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है। एक सब निर्गुण ब्रह्म जो राम कृष्ण इत्यादि है, उनकी उपासना की बात है। भक्ति के द्वारा भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति पत्र पुष्पम फलम स्वयं जो भी भक्ति आता है सति, ये बात कर रहे हैं। और दूसरा कहीं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? कृष्ण ने उनको बताया बड़े सहज प्रभावी, जो क्या है जो अनुदेश्य अव्यक्त अनादि अरु, ये ब्रह्म की जो उपासना है बड़ी कठिन है। हाँ प्रेम अभिस्तर तेषाम अव्यक्त आसक्त के तथा अव्यक्ता ही गोटल जो हम व्यवहार की बात करें अव्यक्त की उपासना से ये हमारे मथुरा में जो व्यक्ति जो कृष्ण है अयोध्या में राम है, इनकी उपासना अत्यंत सरल सहज स्वाभाविक है। क्लेश नहीं, चलते फिरते उठते बैठते उनका नाम हम यदि लें, कृष्ण राधे राम कोई भी नाम लें, सहज रूप में खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सब उनका ध्यान कीजिए। निर्विकार निर्विचे चिंता उपास में नहीं देखा, अव्यक्त जो ब्रह्म है बहुत कठिन है, कोई नहीं सकता। और यदि होगा भी उपासना तो उनका फल क्या है? ब्रह्म में मिलकर के चाहिए जगह लाकर तो उसमें सुख आनंद की कोई चीज ही नहीं है। शंकराचार्य जी ने खुद कहा हज गोविंदम हज गोविंदम गोविंदम का जो पूर्ण मजे नहीं लेगा उसके दुर्ग के कारण इसके बड़ा नहीं होता। सच का रूप में चलते फिरते उठते बैठते तो भगवान का ध्यान नहीं कर सकता, कोई बात नहीं उनका सुनते हैं। अंत में कहते हैं गीता में बहुत प्रकार के उपदेशों की बातें भाषा के कहते हैं। एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ बात क्या आत्मसत्ता चिंतन, जो ये जड़ नहीं है शरीर नहीं है ये आत्मसत्ता है, इस चीज को समझ। दूसरी बात पुनर्स्ति में जो जो भी पुरुषों की सपाते बतलाएं इसके बाद में बढ़ते हैं। जो लोग सबसे अध्याय जो पूजे पर ब्रह्म मान करके हमारी कर्म रूप में उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ कर्म फिर कहते हैं सर्व गुण या तमाम भूया में सूर्य तन इत्यादि तक गाए उपदेश, उनमें तुमको सर्व सूर्य तन, एक सूर्य, एक सूर्य तन, एक सूर्य तन और एक सर्व सूर्य तन अंतरा में बता रहा हूं। बल्कि उसके पहले एक बात बताता हूं कि गीता में उन्होंने बताया जो सब योगियों में वह योगी सर्वश्रेष्ठ है, कौन योगी नाम सर्वेशान मदगते अंतरात्मना श्रद्धामान मेरे मन से उसी को कहता हूं यह सबसे युक्त योगी है जो सब अंतर से सब कुछ प्रत्याकर मन से सब समय हमारा सृजन करता है, वो सबसे बड़ा योगी है। सबको एक नहीं करना है, उसमें साथ समझे इसलिए जो संपूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर होकर के चरणावत होकर के कृष्ण का भजन करता है, राम का भजन करता है, विशेष करके कृष्ण का करता है, कृष्ण राम भगवत सती तो वो सर्वोत्तम रूप है। और उतने भी यहां पर ये बताते हैं मन मना मदभक्तु मदिया की मान नक्तु मान एव जे वस्यति सत्यम देव ज्ञानी कहते हैं मन मना भाव, इसको कहते हैं सर्वभूयता उपदेश। मन मना अपने मन को हमारे अंदर में लगाओ, कैसे लगाओ इसके लिए छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपना वर्ग कर मन मना पाओ अपने मन को संपूर्ण रूप से गोपियों की भांति ब्रजवासियों की भांति हमारे अंदर में लगाओ, कैसे लगाओ मान लिया कि कृष्ण गोचार के लिए जा रहे हैं लाखों लाखों बच्चे उतरते हुए चले जा रहे हैं सभा उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक नवेली गोपी अभी इंद्रपक्ष से विवाहित होकर के आई है नंद गांव में, सुना कि कृष्ण गोचार के लिए अभी जा रहे हैं, सब काम को छोड़कर के कृष्ण के दर्शन के लिए बाहर दरवाजे पर आने उसके साथ ने कहा मत जाना, कहां जा रहे मत जाना, ये साथ तुम्हारी लड़की गई है जहां तुम जा रही हो देखने के लिए मैं भी तुम जा रही हूं, तुम्हारी भी नहीं देखो हमारा साथ तुमको दस देगा और इस तरह ने नहीं दी वो मानी नहीं, दरवाजे के किनारे आकर के खड़ी हुई और एक सबसे कृष्ण उसे देखा और फिर अपने बच्चे को कुछ ऐसे बोला जो उत्सव कारवाचित वही आया और कृष्ण अपनी बात सुनते उसके छोटी में कुछ ऐसे करते थे स्मित हास्य करते थे आगे बढ़ गया। कृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि मनुष्यों की तो बात क्या हिरण्या तक मुक्त हो जाए, जो उनको एक बार देख लेता है उसका चित्त वो सदा के लिए हरण कर लेते हैं, यहां तक कि पुतना जैसी बाल खाती होगी उन्होंने स्पर्श कर दिया उसको मात्र कर दी और उसके बाद पशु पक्षी की स्वतंत्र तंत्र सदा पूर्ण कृष्ण को लेकर के मुक्त हो जाते हैं, सबका चित्त हरण करते हैं इसलिए उनका नाम हरि है, आकर्षण करते हैं इसलिए उनका नाम कृष्ण है, रमण करते हैं इसलिए उनका नाम राम है, इससे उनका चित्र उन्होंने दे दिया खड़ी की खड़ी रह गई, साथ में देखा जब तक खड़ी है कि आई नहीं कृष्ण तो चले गए, उसे पकड़ करके उसे झकझोरा अरे क्या भी तक खड़ी रहेगी, उसको पकड़ करके घर में दे गई, देखा कि उसको सबोच नहीं, उन्होंने उसको कहा देखो अभी दही मंथन करो घर से जाओ दही ले आओ और इसको मंथन करो, वो गई घर में हरी आई को खा लाई और उसका मंथन करने लगी, वो हरिया सबों से दही दी थी उसमें दही उसको भागी नहीं कि यह सही रहेगी क्या, क्योंकि चित्त तो कृष्ण देकर के चले गए, थोड़ी देर के बाद में आई अरे तू क्या कर रही अरे जा पानी जाओ तो कुएं से भर कर हाथ में एक बाकी दोस्त दे दी खड़े दे दिए थी पर एक दो तीन हाथों में भी खड़े दे दिए एक दो तीन एक छोटा सा बच्चा एक गोली में ले लिया रस्सी लेकर के चली गई और घर रस्सी जाने के लिए तो चली गई, बच्चे को वहां पर रखा रस्सी को निकाला और जहां खड़े हुए या जोड़ने पास में आया, उसको ना पास करके फांस फांस लगाकर और बच्चे की तरह नहीं करा कि सहरी मां सब वहां पर दुकान खाने वाली थी, उन लोगों ने कहा देखो इसको भूख लग गया, नहीं तो अपने बच्चे को लेकर के और ऐसा कर रही है, उसको ज्ञान नहीं, ये खड़ा है या भूख है। जो जानने वाली थी उसको कहा, उन लोगों ने कहा ये तो भूख नहीं लगा, नंद का भूख लगा। कृष्ण का उसकी ऐसा मन हुआ है, उनका हाथ ही ऐसा है, उनका सब कुछ मन है, उनकी चलनी बोलनी उनके व्यवहार जो कुछ है सब कुछ मन है। ऐसे भी वो भी होता है जो एक बार देख लिया उसको उससे देखती है, देखने की जरूरत है। हमारे भक्त हो और दूसरा प्रदेश में कि हमारे भक्त हो, भक्त किसको कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाप सेवनम अर्चनम वर्तनम दाक्षम साक्षात निवेदनम इति पुंसाता विष्णु भक्ति से नमलक्षण। भक्ति चाहिए, भक्ति किसको कहते हैं जरा चित्र से समझेंगे। कृष्ण ने ही कहा अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मा जनाभितम आत्मसंदेह कृष्णां सीधरम भक्ति रूपतमा। कृष्ण की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वाचन करते हैं, श्रवण के तर्क की कथाओं को करते हैं, उसके लिए संसारी कोई भी कामना वासना मत रखना, नहीं तो भक्ति नहीं होगी कोई भी बात नहीं। पर कृष्ण हमारे केवल प्रसन्न हो, बस एक ही अलावता है हमारे उनके प्रति भक्ति बढ़े, बस एक अलावता है हमको बेटा हो सुंदर ये हो हमारा यात्रा हो जाए, कोई भी लौकी कोई भी पाप लौकी अपने लिए कोई कामना नहीं रह जाए, कृष्ण प्रसन्न हो कृष्ण संतुष्ट, बस एक ही कामना है। तो ऐसे और ज्ञान कर्म अर्चनामृतम ज्ञान और कर्म के द्वारा वो भक्ति धनी नहीं होगी कृष्ण की सेवा, कृष्ण को जो रुके अच्छी तरह से और कृष्ण के लिए प्रतिकर हो ऐसे कार्यों को शुरू करो। तन मन आत्मा सबके द्वारा, तन मन धन आत्मा जो कुछ है उसके द्वारा संपूर्ण अपनी चेष्टाएं तुम्हारे कृष्ण के लिए हो और संस्थान अभिचिन्न गति से हमारा चित्त कृष्ण के चरणों में लग जाए, इसको कहते हैं भक्त। गीता में यदि ऐसा नहीं करता है तो पुनः पुनः अभ्यास करो, यदि समझ चित्त में रुचि नहीं लग रही, चलते फिरते उठते बैठे नाम करने में क्या लगता है, कुछ नहीं लगता। भक्ति जैसा सहज कुछ नहीं है, ध्यान करो एक महात्मा जी बड़े जोर से ध्यान कर रहे हैं, वो कौन है चौधरी जी किसी वृंदावन में काशीदा के पास 10,000 तक ठंडे पानी में नंगे खड़े रहकर तपस्या कर रहे हैं। हम ब्रह्मा मछली ने चाल दिया कुछ और चाल देखते ही एक पंचमी दूसरे से मिल रही है, देखकर के उनका मन मुक्त हो गया, तपस्या छोड़ करके चले गए। मन माता की 50 लड़कियों के साथ में शादी उनको करना पड़ेगा। जबकि एक आदमी समाधि लगा रहा है और माता कृष्ण कर दो तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा उसने हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल गीता आज शास्त्रों का दे दिया कर्म को केवल नाम आधार, कोई ज्ञान आपको रक्षा नहीं कर सकता है, केवल भगवान का नाम भगवान की भक्ति रक्षा कर सकता है। इसलिए यदि भगवान में कर्म नहीं हो सकते तो क्या करो, पुनः पुनः श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करो, भगवान की कथाएं भगवान का नाम स्वयं भगवान जी है, वो हृदय में प्रवेश करके पवित्र कर देते हैं। ऐसा पवित्र हृदय को पवित्र करने वाला भक्ति को छोड़कर क्या कोई दूसरे साधन नहीं है, इसलिए सब धर्मान सबसे जमा में एक हो, इसलिए हमारे प्रार्थना फिर कहते हैं यदि ऐसा भी नहीं कर सकता अब साथियों के द्वारा करो, मन को फिर के बहाने और काम हरिनाम में हैरान करके तुम्हारा चित्र चला जाता है, पक्षी चला नहीं गया चित्र जाता, आप फिल्म पकड़ करके दे आपसे, ऐसा भी नहीं हो सकता कि रण क्षेत्र में ठीक। अरे एक बार हमारा प्रणाम तो कर दो हमें, बस एक बार कृष्ण को प्रणाम करने वाला जगत में नहीं आता है। बड़ा संसार का पालन करने वाला, गुरु देवताओं की पालना करने वाला को जन्म जन्मांतर में घूमना पड़ेगा, किंतु कृष्ण का भजन करने से उनको एक बार प्रणाम ही संसार को पार कर जाता है। कैसे? समुद्र है, परम समुद्र नारा है, उसको पार करने के लिए नाम रूपी डोंगा है, और संत लोग नाम नारे करके डोंगा पड़ी रही और उस पार चले जाते हैं। देखा कि हम तो उस पार चले गए, कैसे? वो पद के समान उसी दास जी ने लिखा, गोवे के बछड़े के दूध में जो पानी होता है उसको आदमी ऐसे अनायासी ला भी जाता है। ऐसे ये कम संसार को पार कर गया, और यम इत्यादि को बाकी की ऋषि को यह सब किसी को पता नहीं चला कि कब वो पार होकर के चले गए। देखा तो हम लोग तो बैकुंठ में बैठे, इसलिए नाम ऐसी लिखना है। इसलिए गीता ने कहते जदि वह एक बार प्रणाम करो, ऐसे स्मारक की यदि गर्वर प्रणाम नहीं कर सकता तो ऐसा मुझे बुझाते ऐसे ही प्रणाम करो। अरे ऐसे नहीं कर सकते तो कृष्ण के लिए नमस्कार अभी कर दो, यदि कोई ये मन से नहीं किया इसलिए फल नहीं होगा, ऐसा मत कर दो। यदि कोई नहीं जानता है आपके नाम दे देता है कहां कर जाता है तो भगवान का नाम करेगा, अनजान में नहीं जानता है, पर आपका भी फल नहीं होगा, जरूर फल होगा, आपके लिए वो गुण है। भगवान के नाम में विश्वास, राम नाम को अंक है, सब साधन है, तुम अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे सतगुरु। राम कृष्ण के नाम कहते हैं एक भगवान का नाम करता है, और साधन जितने हैं दूसरे ये सब शून्य के बराबर है। यदि एक के ऊपर में शून्य एक दो तो दस, एक और दो तो दस दस को मान बनता जाएगा, और लाख की ओर रख करके भी एक को हटा दो तो उसका कुछ मूल्य नहीं। इससे यदि भगवान का नाम और भक्ति होती है तो भाई उसका मूल्य है, जो जो आप संसार में कर्म कर रहे हैं सब कर्म इत्यादि कर रहे हैं ठीक है, इसका भी मूल्य है। और भगवान को बात देकर के भगवान के नाम को बात देकर के आप जितने की कुछ कर रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। ये सब गीता के उपदेश हैं। कृष्ण के समान और देवता नहीं है, ये तो अपराध है। जब तू नारायण ब्रह्म रुद्रा भी देवता ही समझते हैं निश्चय तथा पावन भी भक्त जो इसको याद रखें, मथुरा में जो कृष्ण आए इनके बराबर कोई देवता नहीं है, सब देवताओं की उपासना कर रहे थे, कृष्ण की उपासना एक नहीं है भाई, इस चीज को समझो, कृष्ण की उपासना सनातन धर्म है और ये सब सनातन नहीं है। इसे सब फिर मैंने कुछ बताया समय रहने से नहीं, और गीता के एक एक श्लोकों को मैं कुछ दिन विष्णु ने बताया बताकर इसके आगे ही तक मैं समाप्त करता हूं। आप लोगों ने यहां पर गीता श्रवण किया, पंडित जी ने आप लोगों को सुनाया, आप लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, पंडित जी भी बड़े विद्वान आदमी हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे समझाया, इसलिए जब नहीं कोई कुछ कथा हो तो हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि गीता की बात नहीं होनी चाहिए, आप लोग जब समझ सके कृष्ण के अर्जुन के समान में भक्त होने की चेष्टा करेंगे, अलग जब और उनके बातों को उचित प्रकार से विश्वास करके ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे। शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य कृष्ण का दास हूं, उनकी सेवा करना ही हमारा परम धर्म सनातन है। किसी को समस्त शास्त्रों में वेदों में उपनिषदों में सब पंचाशुदेव पावरेशो वैष्णवेश